गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं तो लोगों को याद ही नहीं रहता है कि ब्रेकफास्ट में क्या था, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल इतना भागदौड़ की हो गई है कि खाना क्या खा रहे हैं वो पता नहीं रहता। तो आप सबको पता है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपका मेंटल और हार्ट का रिदम एक अच्छे उस पर चल रहा है। इससे फिर शुरू करें, बैठे बैठे एक एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर करना, फिर नीचे लाना। अब सांस लेना और छोड़ना नॉर्मल रिदम में। और अब दोनों हाथों को ऊपर करना, सांस को छोड़ना, फिर नीचे लाना। और थर्ड टाइम फिर से दोनों हाथों को ऊपर करना, गर्दन को पीछे करना और सांस छोड़ना। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे लाएं और जो हाथ आगे कर सकते हैं थोड़ा आगे कर लें। और एक सेकंड अपने अंदर बिल्कुल स्टैंड स्टिल होकर वाइब्रेशन फील करें, वाइब्रेशन फील करें, एनर्जी को फील करें। वेरी गुड। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ाना, क्योंकि 21st century है, सेंचुरी ऑफ वाइब्रेशन, सेंचुरी ऑफ एनर्जी। जिस व्यक्ति की एनर्जी लेवल अच्छी होगी वो मैच जीतेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी दूसरों को दे सकेगा और दूसरों से वो एनर्जी को गेन करके उसको फ्लो करने देगा। हम सभी जानते हैं इंडियन माइथोलॉजी में जितने भी देवी देवता बताए गए हैं सबका सिंबल ऐसा दिखाया गया है। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? ऐसा क्यों दिखाया गया? और आशीर्वाद में क्या देते हैं? आशीर्वाद में क्या देते हैं? ब्लेसिंग्स में क्या देते हैं? वर्ड्स तो नहीं देते, सुख शांति हो, एनर्जी रहती है। इसका अर्थ है वट एवर इज कमिंग इट हैज टू गो, फ्लोइंग। जो चीज मेरे पास आई है जाने दो उसको। जितना हम एनर्जी गेन करेंगे, लेंगे, देंगे, उतना हमारी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्दी का अर्थ है हील दाय, हील दाय। हिंदी में इसका वर्ड है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व आस्था। जब मैं अपने स्व के आस्था में, कॉन्शियसनेस में टिकता हूं तब मैं हेल्दी हूं। स्वास्थ्य, स्व आस्था। व्हेन आई एम सिटिंग इन माय कॉन्शियसनेस आई एम हेल्दी। जब मैं अपने कॉन्शियसनेस में नहीं हूं तो बीमार हूं। इसीलिए इंग्लिश वर्ड है डिसीज, डिजीज। डिजीज का अर्थ क्या हुआ? डिस ईज. ईज इज व्हाट? ईज इज व्हाट? ईज इज अवर नेचुरल नेचर. जैसे पानी का नेचुरल नेचर ठंडा है, कूल है, बॉइल भी कर लें तो रख देंगे तो ठंडा होगा, ऐसे ही इस आत्मा का भी नेचुरल नेचर क्या है? ईज. तभी कहते हैं भगवान ने हमें यहां भेजा, लिव इन ईज, ईट इन ईज, स्लीप इन ईज. पर हमने धीरे धीरे इसमें क्या जोड़ दिया? DIS, डिजीज. तो आज 21वीं सदी में बीमारियां इसलिए बढ़ रही है कि हर व्यक्ति डिस ईज है. डिस ईज का अर्थ क्या हुआ? हर काम जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, खाना भी फास्ट, पानी भी फास्ट, गल्पिंग. तो इसके कारण पेट, एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, ओबेसिटी, अल्सर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज फास्ट करते जा रहे हैं. इसको कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी. टाइप ए पर्सनालिटी का अर्थ है हर व्यक्ति आज ज्यादातर टाइप ए होता जा रहा है. टाइप ए का अर्थ है हर चीज वो जल्दी जल्दी करना चाहता है. कभी कभी यहां भी देखने को मिलता है, यहां आप लोगों के पास इनफ टाइम है, कोई जल्दी नहीं है, फिर भी कई लोग जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी में डीप डाउन गया हुआ है, अनकॉन्शियस लेवल पे गया हुआ है, इसलिए डिस ईज होते जा रहे हैं. जोक में मैं कभी कभी कहता हूं टाइप ए यानी क्या? टाइप ए वाला व्यक्ति वनडे मैच खेलना चाहता है. वनडे मैच क्या होता है? एक ही दिन में मेरे पास सब रिजल्ट आ जाए. लाइफ इज नॉट वनडे मैच, लाइफ इज ए प्रोसेस. एक अच्छे प्रोफेसर ने बहुत अच्छा कहा, आज का व्यक्ति हाफ ऑफ द टाइम ही स्पेंड हिज हेल्थ, हाफ ऑफ द लाइफ ही स्पेंड हिज हेल्थ टू अर्न द वेल्थ, एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ ही स्पेंड हिज वेल्थ टू अर्न द हेल्थ. आधी जिंदगी अपनी हेल्थ को गवाकर पैसा कमाता है, नेक्स्ट आधी जिंदगी वही पैसा खत्म करके हेल्थ को प्राप्त करता है. इसलिए ज्यादातर बीमारियां 35 साल 30 साल के बाद आज देखने में आ रही है, और उसमें अब डॉक्टर कमाता है. कभी कभी हम इतना तेजी से भागते हैं, इतना तेजी से भागते हैं कि शमशान में बोर्ड लग जाता है, शमशान में, ग्रेवयार्ड में बोर्ड लग जाता है, ये बहुत सक्सेसफुल था, मिलियनर था, पर इसको 35 साल में हार्ट अटैक हो गया. अब वो बोर्ड काम का? मिलियनर तो हो गया, पर कहां मिलियनर हुआ? शमशान में जाकर. और वहां बोर्ड क्या लगा? हार्ट अटैक हो गया. इसलिए आज नंबर वन किलर समाज में, शहर में रहने वाले व्यक्ति को हृदय रोग की बीमारी होती जा रही है. इसलिए पहले से ही हम अपने को ठीक रखें. ये प्रिडिक्ट किया गया है कि आने वाले समय में भारतीय को, इंडियंस को, हृदय रोग की बीमारी और डायबिटीज की बीमारी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगी, 6 times more. कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे इमोशनल फैक्टर्स हैं. हम हमारे बच्चों को ये बीमारियां न होने दें, खुद में भी प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और बच्चों को भी हेल्दी मेजर्स बचपन से ही सिखाएं. क्योंकि ज्यादातर माता पिता सोचते हैं अभी तो 6 साल का है, 10 साल का है, इसको खाने दो जो खाना है. कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरी में 12 साल 10 साल से ही चालू हो जाता है, एकदम हार्ट अटैक नहीं होता है, 20 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल नहीं डिपॉजिट होता, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होकर जब 35 साल का होता है उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ती है तो सडन हार्ट अटैक होते हैं। इसलिए अच्छी हैबिट्स हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाएं, क्योंकि 21st सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर एक को कंपटीशन में उतरना है। जॉब कंपटीशन वाले हैं, पढ़ाई जॉब कॉम्पिटिटिव है, उसमें अगर वो बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा तो वो चाहे कितना भी पढ़ाई पढ़ ले फिट नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा स्लोगन एक जगह पढ़ा, शेप अप और शिप आउट। शेप अप याने आप अपने को शेप को ठीक रखो, नहीं तो शिप आउट हो जाओगे। इसीलिए शुरू से हम अपनी हेल्थ को ठीक रखें। हेल्थ केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी चारों तरफ से फिटनेस अच्छी रहे। हमें माइंड में स्ट्रेंथ चाहिए, बॉडी में स्टेमिना चाहिए और सोल में एंड्योरेंस चाहिए। स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड एंड्योरेंस तीनों चाहिए। तीनों अच्छी तरह काम करेंगे माइंड बॉडी सोल, तब जाके हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला अच्छी रीति कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ है तो कहीं भी मैच हार सकते हैं। जैसे रिसेंटली जो इंसिडेंस हुआ, नाम न देकर, उस इंसिडेंस में भी देखें कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कमजोर थी, जो उसकी प्रीवियस मेमोरी ने उसको गवर्न कर लिया और उसने वो एक्सीडेंट कर दिया, इंसिडेंट हो गया। तो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा है कि आपको लाइफ में सबसे बड़ी चीज शांत होकर रोज अपने को देखना है। आप अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठकर शांत हो जाओ तो दुनिया आपके पास चलकर आएगी। इसका अर्थ है जैसे जैसे माइंड शांत होता जाता है, माइंड अपनी दुनिया खुद बनाते जाता है। इसीलिए कहा जाता है माइंड कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन, हेवन आउट ऑफ हेल। यही मन स्वर्ग बना सकता है, यही मन कलयुग बना सकता है, यही मन डिप्रेशन में ला सकता है, यही मन तनाव में ला सकता है। डिप्रेशन क्या है? दूसरा बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में हृदय रोग की बीमारी के बाद डिप्रेशन, निराशा। आज ये हम देख रहे हैं कि लोगों का पहला नेचर सेंसिटिव होता जा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण, खुद का अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन, बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन, और वो न होने के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा कारण डिप्रेशन का है लॉस ऑफ मीनिंग इन द लाइफ। लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सो जा रहे हैं, कोई जिंदगी का अर्थ नहीं। मैकेनिकल डूअर्स होते जा रहे हैं, रोबोट्स होते जा रहे हैं, इसके कारण डिप्रेशन कॉमन होता जा रहा है। और WHO ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया कि हार्ट डिजीज के बाद सेकंड नंबर प्रॉब्लम वर्ल्ड में डिप्रेशन होगा। हर घर में से एक व्यक्ति आने वाले समय में या तो हार्ट डिजीज या डायबिटीज या डिप्रेशन से ग्रसित होगा। इसलिए शुरू से हम अपने इमोशंस को कमांड में रखें। डिप्रेशन का अर्थ है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, डिप्रेशन का अर्थ है सप्रेसिंग एवरीथिंग इनसाइड। यानी इसका अर्थ है कि मैं सब चीजें दबाते जा रहा हूं। डिप्रेशन किनको जल्दी आता है? जो अपनी भावनाओं को, इमोशंस को दबाते जाते हैं, सप्रेसिंग। इसको एक और लैंग्वेज में कहें, डिप्रेशन मीन्स बैंकरप्सी ऑफ थॉट्स। वो अपने विचार पैदा ही नहीं कर पा रहा है। स्ट्रेस इज व्हाट? ओवर प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव एंड वेस्टफुल थॉट्स इज स्ट्रेस। जब बहुत विचार मैं पैदा कर रहा हूं जिसका कोई अर्थ नहीं, मकसद नहीं, वो विचार तनाव पैदा करते हैं। और वो विचार जो मैं पैदा ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे माइंड में कैपेसिटी नहीं है, थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, तो वो डिप्रेशन में लाती है। कभी कभी कई यंगस्टर्स आते हैं, कहते हैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। हम उनको साइकोथेरेपी देते हैं, कहते हैं सर मैं सोच ही नहीं सकता, आप मेरे लिए सोचो। दिस इज अ प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ पीपल। जब व्यक्ति की थिंकिंग एबिलिटी ही इतनी कमजोर हो जाए तो उसके अंदर का जो फैक्ट्री है माइंड, उसका प्रोडक्शन खत्म हो जाता है और उसके कारण नेगेटिव थॉट्स और वेस्टफुल थॉट्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्यक्ति का यही है कि वो शांत बैठना नहीं जानता। और अगर वो शांत बैठना सीख ले तो वो वर्ल्ड का कुछ भी काम कर सकता है। मैं आपसे पूछूं, आप जो काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब पे जाते हैं, वो जॉब जब करते हैं, घर से निकलते हैं और जब घर वो वापस आते हैं, वो अपनी एनर्जी को क्या फील करते हैं? जब जॉब पे जा रहे हैं घर से, उनको कैसा लगता है अंदर? वेदर दे फील एनर्जेटिक, वेदर दे फील हैप्पी वेन दे आर गोइंग टू द वर्क, और जब काम से वापस घर आ रहे हैं तो कैसा फील करते हैं? सबसे बड़ा जॉब स्ट्रेस कहां से आता है? यहीं से आता है। अगर मैं काम को एंजॉय नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही काम पे जा रहा हूं क्योंकि करना है, तो वो काम एनर्जी नहीं देगा, वो काम एनर्जी को ड्रेन करेगा। इसलिए शाम को लौटते समय भी मैं डेड जा रहा हूं, जाते समय भी डेड आर्मी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, वही कब हुई? शाम को आ रहा हूं और डेड। अगर डेड आर्मी बन के जा रहा हूं काम पे और डेड आर्मी बन के वापिस आ रहा हूं, तो घर पे कार्य क्षेत्र पर जो मुझे एनर्जी देना है वो नहीं देते। इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक बड़े शहरों में, बड़े इंडस्ट्रीज में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में कब होते हैं? सोमवार को होते हैं। मंडे इज ए वेरी गुड डे फॉर कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि उस दिन जब व्यक्ति उठता है, संडे को एंजॉय करके उठता है, सोमवार को उठा, आज तो सोमवार है, मुझे फिर से 6 दिन काम करना है, काम तो मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं, फोर्स करके जाता है या नहीं जाना चाहता है, मैसेज माइंड से बॉडी में जाता है। माइंड का सबसे अच्छा दोस्त हार्ट है, और हार्ट का कोरोनरी आर्टरी जो खून देती है। माइंड ने कहा आज सोमवार है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोरोनरी आर्टरी भी कहती है अच्छा तुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, खट से दब जाती है। और इसलिए चेस्ट पेन, एंजाइना, डिप्रेशन, हार्ट अटैक सोमवार को ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भगवान ने हमें ये दिया कि जो माइंड सोचता है बॉडी करके दिखाती है। स्ट्रेस इज व्हाट? माइंड प्रोड्यूस द डिमांड, बॉडी प्रोड्यूस द रिस्पांस। माइंड डिमांड पैदा करता है, बॉडी करके दिखाती है। भगवान ने हमें यहां सेफ्टी वॉल नहीं लगाया। यहां सेफ्टी वॉल लगाता प्रेशर कुकर जैसा, सीटी बज जाए, प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो बहुत अच्छा था। गुस्सा करूं, टेंशन करूं, चिंता करूं, सीटी बज जाए, चुप हो जाऊं। दूसरे के ऊपर गुस्सा किया, टेंशन किया, उसकी सीटी बज जाए, नॉर्मल हो जाऊं, अब ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकता। वो सीटी यहां नहीं बजती, वो सीटी शरीर के अंगों में बजती है। और हर व्यक्ति का एक अंग कमजोर होता है कलयुग में, और बीमारी वहां से निकलती है, किसी को अल्सर के रूप में, किसी को हार्ट डिजीज, किसी को डायबिटीज, किसी को न्यूरोटिक प्रॉब्लम। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मेंटल माइंड को साइलेंस करना सीखें, बार बार इसके ऊपर हम अटेंशन दें। लाइफ एक गेम है, लाइफ एक गेम है, और ये गेम काय के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस के ऊपर। हम कौन सी चॉइस लाइफ में ले रहे हैं उससे मैच डिसाइड हो जाता है। अगर मैंने चॉइस गलत ले ली, हार गया, टॉस जीता और उनको खेलने को मौका दे दिया। रिसेंटली द्रविड़ ने सेकंड मैच में टॉस जीता और उनको खेलने को मौका दे दिया और वो जीत गए। इसके ऊपर काफी बहस हुई कि द्रविड़ को ये टॉस जीतकर खुद को खेलना चाहिए था। अब उसकी जो चॉइस थी उसके माइंड के अनुसार उसने ली, गलत थी कि राइट थी वो बहस की अलग चीज है। इसीलिए लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस, और चॉइस डिपेंड करता है हमारे सोच पर, हमारे सोच पर। अगर मेरा सोच अच्छा है तो मेरी चॉइस अच्छी होगी। इसीलिए कहा, विचार और विश्वास आप दुनिया बना सकते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं, पावरफुल हैं, आपका विश्वास अच्छा है अपने ऊपर और आपके गोल के ऊपर, तो आप दुनिया जीत जाते हैं। विश्वास और विचार, ये कोई भी व्यक्ति को नई दुनिया बना देता है। हेनरी फोर्ड, उसने अपने जिंदगी में काम शुरू किया, सिंपल काम करता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, पर हर दिन सुबह उठकर सोचता था। क्या सोचता था? कि मुझे आज के दिन अपनी फैक्ट्री में क्या करना है। और उसकी पत्नी उसके ऊपर विश्वास रखती थी कि जो तू सोच रहा है कर दे। इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड इज थिंकिंग, वाइफ इज बिलीविंग। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छा, कि जो वो सोच रहा है उसकी पत्नी उसको कह रही है कर दे। और ये जिसको मिल जाता है दोनों, वो नई दुनिया बना देता है। उसने हर दिन अपनी कंपनी में नया परिवर्तन लाता गया, हर दिन अपनी कार में एक नया चेंज लाया। जब उसकी कार 1908 में दुनिया में आई तो पहला ट्रिलियन डॉलर बिजनेस वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने किया। थिंकिंग एंड बिलीविंग इज अ रेयर कॉम्बिनेशन, और वो जब हम करते हैं, हर दिन सोचते हैं कि आज के दिन मुझे क्या करना है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी प्लानिंग करता है, सुबह उठकर आर्किटेक्ट बनता है अपना, तो दिन में भी वो मैनेजर बनता है। सुबह अपना लीडरशिप कैरेक्टर को डेवलप करिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज करिए, अपनी फिटनेस को ठीक रखिए, और एक्सरसाइज के बाद बैठ जाइए। गॉड का पहला शब्द है जी, जी का अर्थ है जनरेटर। जनरेटर का अर्थ है सुबह मैंने अपनी एनर्जी को जनरेट किया। कौन सी एनर्जी को जनरेट किया? फिजिकल एनर्जी को जनरेट किया एक्सरसाइज से, और मेंटल एनर्जी को जनरेट किया मेडिटेशन से। Why meditation is compulsory? Why exercise is compulsory? Because both are useful for our life. Exercise से मेरे stress level को कम करता हूँ, meditation से मैं shock को कम करता हूँ। मैं इसको detail में बताऊंगा। Meditation, simple definition of meditation means positive, powerful, purposeful thoughts. मेडिटेशन का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा वाले और मकसद वाले विचार, पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थॉट्स। जब मैं अपने आप में बैठता हूं सुबह एक्सरसाइज के बाद, मैं सोचता हूं आज के दिन मुझे क्या करना है अपने कार्य क्षेत्र पर। दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ प्लानिंग। जब मैं प्लान करूंगा तभी दिन में वो ऑपरेट करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा। सुबह अगर मैं जनरेट नहीं करूंगा, आर्किटेक्ट नहीं बनूंगा, तो दिन में क्या ऑपरेट करूंगा, एक मैकेनिक ही रहूंगा। सुबह अपनी प्लानिंग लेकर मैदान में उतरूंगा तो तब मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करूंगा, ऑपरेट करूंगा। क्या सोचना है मुझे सुबह? हर दिन ये सोचना है। आप भी करिए, फिर से दोनों हाथ ऊपर करिए, नीचे लाइए, दो तालियां लेफ्ट में, तीन तालियां राइट। अब क्या सोचना है फिर से आप अपने अंदर भी लाना, बोलना, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, टुडे इज अ न्यू डे। आज का दिन नया है, आज का दिन भगवान ने मुझे गिफ्ट में दिया है, आज का दिन मुझे कुछ नया करना है। दुनिया मेरे में है, वर्ल्ड इज विद इन मी। हाँ बोलिए, दुनिया मेरे अंदर है। जब श्री कृष्ण का मुंह खोला तो क्या था? दुनिया उसके मुंह के अंदर थी। इसका अर्थ क्या हुआ? दुनिया मेरे अंदर है, न कि मैं दुनिया में हूं। यहां ही फर्क पड़ जाता है सक्सेस और फेल्यूर का। जो आदमी ये सोचता है दुनिया मेरे अंदर है तो वो दुनिया के ऊपर असर डालता है। जो सोचता है मैं दुनिया में हूं तो उसके ऊपर क्या होगा? इसने मुझे कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, आज बहुत ट्रैफिक जाम है, तो दुनिया का असर उसके ऊपर आने लग जाएगा। आज बहुत, मेरी एस्ट्रोलॉजी मैंने पेपर में पढ़ी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खराब है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज तो बहुत खराब है। इसका अर्थ क्या है? दुनिया उसके ऊपर असर डालना शुरू कर दिया। घर से निकला, दुनिया मेरे अंदर है, मुझे दुनिया के ऊपर असर डालना है। नो वन कैन हर्ट यू अनलेस यू वॉन्ट टू गेट हर्ट। कोई भी आपको घायल नहीं कर सकता जब तक आप खुद घायल नहीं होना चाहो। इसीलिए ज्यादातर व्यक्ति, मेजर प्रॉब्लम हम सभी का क्या रहता है? उसने मेरे लिए ये सोच रहा है, वो मेरे लिए ये कह रहा है, तो पूरी जिंदगी उसकी इसी में चली जाती है। क्योंकि वो जो सोच रहा है उसके साथ वैसा का वैसा घटित होता है। जो हम सोचते हैं, मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बच्चा ठीक से आएगा कि नहीं, यही एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है। सबसे बड़ा तनाव यही होता है जिसको कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। फिर से हम अपने साइलेंट मोड में बैठते हैं, विचारों को देखते हैं, नेगेटिव थॉट्स को जाने दें और पॉजिटिव थॉट्स को आने दें। तो सुबह कैसे उठना है? एनर्जी के साथ। और कार्य क्षेत्र पर जाना है एनर्जी के साथ। लीडर कौन है? लीडर वही बनता है जो एनर्जी को लेकर अपने कार्य क्षेत्र पर जाए। अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं अपने हॉस्पिटल में जा रहा हूं ऐसे, और क्लिनिक में बैठा हूं ऐसे, तो पेशेंट क्या सोचेगा? कि ये डॉक्टर खुद का प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता, मेरा क्या करेगा। फैक्ट्री का लीडर है, एनर्जी के साथ जाए और अपने वर्कर्स को मोटिवेट करे। इसीलिए कहा गया लीडर वो है, वन हु इग्नाइट द माइंड एंड टच द हार्ट। वो है लीडर जो उसके माइंड को इग्नाइट करे और हार्ट को टच करे। एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लीडर वो है जो हर दिन अपने लोगों को हर दिन अपने लोगों को, हर सुबह अपने लोगों को कारण दे उठने का। ही शुड गिव रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। अगर वो सुबह उठकर डल है वर्कर, तो इसका मतलब है लीडर की गलती है। लीडर वो है जो हर दिन अपने कार्य, अपने लोगों को एक रीजन दे कि आज के दिन मुझे उठकर क्या करना है। चीयरफुल होकर जाएं, जब कभी भी जाएं खुश होकर जाएं। घर की फाइल घर में रख दें, घर की फाइल कार्य क्षेत्र पर ना ले जाएं। ज्यादातर क्या होता है, हम घर की फाइल कार्य क्षेत्र पर ले जाने की कोशिश करते हैं और कार्य क्षेत्र की फाइल घर में लाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों फाइलें मिक्स हो जाती है, और दोनों फाइलें मिक्स होती है तो हेवी हो जाते हैं और हेवी होकर निकलते हैं। घर की फाइल घर में, अब मैं जा रहा हूं कार्य पर, एज ए रोल मुझे जो प्ले करना है, जो मेरा रोल है वो मैं प्ले करूं फुल फोकस से, फुल कंसंट्रेशन से, जिसको आजकल कहा जाता है अवेयरनेस। जितना मैं अवेयर हूंगा उतना मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा, मेरा डिसीशन अच्छा होगा। अगर मैं अवेयर में नहीं हूं तो मेरा डिसीशन ठीक नहीं होगा। जैसे बॉम्बे फ्लड के समय कई लोगों ने जिंदगी लॉस की और कई लोग बच गए, क्योंकि उनका डिसीशन अच्छा था। उन्होंने देखा पानी बढ़ता जा रहा है, कार को छोड़कर चले गए, कार की चिंता नहीं की। कई लोगों ने कार के दरवाजे, खिड़की, दरवाजे बंद करके बैठे रहे और हाइपोक्सिया से खत्म हो गए। लाइफ का ये मिली सेकंड का ही डिसीशन काम में आता है। इसको आजकल कहते हैं इंस्टेंट मैनेजमेंट। हाउ योर इंस्टेंट इज वर्किंग। अभी तक लॉजिकल मैनेजमेंट चलता था, अब ज्यादा मैनेजमेंट इस पे आ रहा है कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है। और इंस्टिंक्ट तभी आप समझ सकोगे जब इसको रोज सुनोगे। लिसन टू योर इनर वॉइस, अलाउ अदर्स टू लिसन देयर इनर वॉइस। तो रोज सुबह उठकर जनरेट किया, दिन में ऑपरेट किया। इसीलिए कहा थॉट्स ही हमारी डेस्टिनी है। अल्टीमेटली हम क्या हैं, वही हैं जो हम सोच रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हो जो आप सोच रहे हो। तो बीमारी का भी कारण क्या हुआ, हर बीमारी का कारण भी वही हुआ जिस तरीके का सोच मैं सोच रहा हूं। अगर मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, कब्जी की शिकायत रहती है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मैं चीजों को पकड़ा हुआ हूं। हार्ट की बीमारी है, इसका अर्थ है कि मैं अकेला हो गया हूं, भाग रहा हूं, आइसोलेट हो गया हूं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं इल, आई एल एल, इल। इल का अर्थ क्या हुआ, आई लैक लव, जिंदगी में प्यार ही नहीं है, सूख गया हूं, ड्राई हो गया हूं। तो हार्ट डिजीज आ जाती है। थायराइड का प्रॉब्लम कब आ जाता है, थायराइड का प्रॉब्लम कब आता है, जनरली लेडीज में थायराइड का प्रॉब्लम बहुत जल्दी आता है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है। अल्टीमेटली थॉट से हम अपने को आगे तक ले जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा कोटेशन है पतंजलि का कि जब जीवन में आपका मकसद क्लियर हो जाता है, आपके विचार टूट पड़ते हैं, आपका माइंड ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, सब लिमिटेशन को तोड़ देता है और आप अपनी नई दुनिया बनाते हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी बचपन से जो उसके अंदर गया है उसी के अनुसार जीता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हर व्यक्ति अपनी एक कंफर्ट जोन बना लेता है, उस पर्सनालिटी में ही वो जिएगा। जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही माता पिता ने बार बार इंस्ट्रक्शन दिया है, ये मत करना, ऐसे मत करना, वो मत करना, ये मत करना, ये मत करना, तो वो बच्चे की हालत अंदर कंप्यूटर में चला गया। अब वो बड़ा होगा, डिसीशन लेना चाहेगा, अंदर का कंप्यूटर उसको कहेगा कहां ले रहा है, तेरी कैपेसिटी नहीं है, तो वो वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज मेजर प्रॉब्लम आ रहा है यंगस्टर्स में, उनका डिसीशन पावर कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि माता पिता ने अपने विचार भी बच्चे को दे दिए। हर माता पिता अपने को बच्चे में देखना चाहता है, अगर वो नहीं देख पाता तो टेंशन आता है। इसलिए एक ऑथर ने कहा, सब कुछ दो बच्चे को पर एक चीज मत दो, सब कुछ बच्चे को दो पर एक चीज मत दो। क्या नहीं दो? संस्कार दो, सब दो, पर अपने विचार बच्चे को मत दो। सॉल्यूशंस, हर चीज आप अगर सॉल्यूशन उसको दोगे तो बच्चे का जो रूट है, थिंकिंग रूट है, वो डेवलप ही नहीं होगा, बड़े होने पे भी वैसा ही रहेगा। इसलिए आजकल जितने भी प्रॉब्लम यंगस्टर्स के देख रहे हैं वो इसीलिए हैं कि वो खुद का लॉजिकल सिस्टम, एनालिटिकल सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, लाइफ इज 10% व्हाट एक्चुअली हैपन टू अस, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। जिंदगी क्या है? 10% कुछ होता है और 90% क्या है? 90% क्या है? हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अब 10% तो हर एक के साथ कुछ होता है, वो अनअवॉइडेबल है, वो होगा ही होगा, पर 90% क्या है जिसमें हम अपनी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। 4 महीने पहले मैं ट्रेन में आ रहा था, सेकंड एसी कोच था, एक हस्बैंड और वाइफ भी बैठे हुए थे। हस्बैंड को चाय पीना था, स्टेशन पे उसने उतरना चाहा पर ट्रेन चल रही। ट्रेन कोच में एक चाय वाला चढ़ता है, चाय बेचता है, उससे ये व्यक्ति पूछता है चाय कितने की, वो व्यक्ति के वो चाय वाला कहता है 5 रुपए की, और कप इतना छोटा, और कप चाय 5 रुपए की, स्टेशन पे चाय 4 रुपए की और कप बड़ा। तो ये व्यक्ति 10 मिनट तक उससे लड़ता रहता है, चाय वो 4 रुपए की बेच रहे हैं, उनका कप इतना बड़ा है, तेरा कप इतना छोटा है और तू 5 रुपए की बेच रहा है। अब हुआ क्या, 10 मिनट तक 1 रुपया बचाने के चक्कर में उसने अपने शरीर की एड्रिनल ग्लैंड को चालू कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर रहती है, जो तनाव में तनाव वाले हार्मोन अंदर भेजती है। अब 10 मिनट तक उसने तनाव के हार्मोन भेजता गया, क्यों बेच रहा है तू 4 रुपए की इतना छोटा कप, 4 रुपए की इतना छोटा कप, वो 5, लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा। अब 1 रुपए बचाने के चक्कर में 1.5 लाख रुपया बायपास सर्जरी का, एंजियोप्लास्टी का डॉक्टर को देगा। इससे अच्छा 1 रुपया के चक्कर बचाता, पीना है पी ले, नहीं पीना है मत पी, और 1 रुपया दे दे, झगड़ा खत्म। ये हमारी छोटी छोटी रिएक्शन ही शरीर को खत्म करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट यही है कि ये 90% को कैसे हैंडल करें, और वो हमारे साथ रोज होगी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा नहीं होगी, होगी, पर उसको हैंडल करना, उसको रिस्पॉन्ड करना ही जिंदगी है। पर हम उन 90% की एनर्जी में अपने को जिंदगी को खत्म कर देते हैं, और वो पैसे, छोटे छोटे पैसे, कूली के पैसे, बाई के पैसे, उसके झगड़े में हम बहुत नुकसान अपने जिंदगी को कर देते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। मस्तिष्क की कोशिकाएं हमारे विचारों से असर होती है, इसीलिए कहा विचार एक ऊर्जा को लेकर शरीर में जाता है। हमारे 2 हिस्से हैं ब्रेन के, लेफ्ट राइट। लेफ्ट हमारा एनालिसिस को करता है, राइट हमारा केयर को करता है, सोच विजुलाइजेशन को करता है। ज्यादातर भाइयों का डोमिनेंट ब्रेन लेफ्ट रहता है, बहनों का राइट रहता है। पर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो दोनों का बैलेंस चाहिए। जो स्टीवन कोवी ने अपनी किताब में लिखा, 7 हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, मैनेज बाय लेफ्ट लीड बाय राइट। अगर आपको केवल मैनेजर बनना है तो लेफ्ट का यूज करिए, पर अच्छा लीडर बनना है तो लीड बाय राइट, यानी दोनों का यूज करिए। किरण बेदी, राइट डोमिनेंट पर लेफ्ट का यूज किया तो लीडर बन गई। इंदिरा गांधी, लेफ्ट का यूज किया तो लीडर बन गई। हर व्यक्ति में ये दोनों कैरेक्टर्स रहते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है कि दोनों कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करें। इसीलिए एक एक्सरसाइज हमेशा बच्चों को, इसलिए ताली बजाई जाती है। क्यों बजाई जाती है? हाँ, बजाए। दोनों ब्रेन का डेवलप होता है, दोनों साइड का डेवलप होता है, दोनों कैरेक्टर्स को डेवलप करने दें। गुड। अब ये एक मैकेनिज्म है जो शरीर में काम करता है, ब्रेन में। जो कुछ हम देखते हैं, घटनाएं अंदर जाती है, हायर सेंटर्स पे जाती है, फिर हमारे लास्ट सेंटर पे आके हम डिसीशन लेते हैं। ये एरिया को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसमें प्रीवियस मेमोरीज भी आती रहती हैं। हमारा एक एरिया में मेमोरीज रहती हैं, जो हमारे साथ बचपन से अभी तक घटा वो यहाँ रहता है। जब कभी भी हम डिसीशन लेते हैं वो हमारी प्रीवियस मेमोरी भी उसमें काम करती है। और ज्यादातर व्यक्ति जो डिसीशन लेता है वो अपनी पुरानी मेमोरीज के आधार पर लेता है। अब अभी का केस जो हुआ उसमें भी वो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं ये ना करूं, पर उसकी प्रीवियस मेमोरी ने उसको कहा नहीं कर दे, और उसने शॉर्ट रूट यूज किया। एक शॉर्ट रूट होता है, भगवान ने बनाया है, और उसने कर दिया। इसका बहुत अच्छा क्लियर एग्जांपल आपको देता हूं, माइक टाइसन और होलीफील्ड। माइक टाइसन की जब लड़ाई होलीफील्ड से हो रही थी तो होलीफील्ड को देखकर उसकी मेमोरी ने कहा ये वही व्यक्ति है जिससे तेरा झगड़ा हुआ था, और शॉर्ट रूट ने कहा कर दे, और उसने कर दिया, उसका कान काट लिया। उसकी एक सेकंड की गलती से माइक टाइसन को $1 मिलियन देने पड़े, मिली सेकंड। दिस इज कॉल्ड लो ईक्यू। इसको आजकल कहा जाता है इमोशनल कोशेंट कम है। आजकल अच्छा सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए यू नीड गुड ईक्यू। आईक्यू 20% सफलता दिलाता है, ईक्यू 80% सफलता दिलाता है। इसलिए IIM के सिलेक्शन में, जॉब इंटरव्यूज में, पर्सनल इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में ईक्यू को देखते हैं। और जिसका ईक्यू अच्छा होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। ईक्यू का अर्थ है बैलेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट। कोई भी रिएक्शन आ रही है, मेरा सेक्रेटरी गुस्सा कर रहा है, मेरा सब ऑर्डिनेट गुस्सा कर रहा है, मैं उसको जवाब शांत से दे रहा हूं। अगर मैं भी गुस्सा कर रहा हूं तो मैं लीडर काएगा। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में लीडर की यही क्वालिटी देखी जाती है। इसीलिए ज्यादातर बच्चों का जो मैं बता रहा था नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका थिंकिंग रूट काम नहीं कर रहा है, शॉर्ट रूट काम कर रहा है और गलतियां कर रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है अमेरिका में भी कि आपके बच्चे पढ़ते अच्छा हैं पर डरते बहुत हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि हम माता पिता ने उनको सोचने का भी मौका नहीं देते हैं, इसलिए उनका ये रूट डेवलप नहीं होता है। बचपन से ही बच्चे में आदत डालो सोचने की, उसको अपने डिसीशंस इंडिपेंडेंट लेने की प्रेरित करो। माता पिता का, टीचर का, डॉक्टर का काम केवल यही है उसको सपोर्ट करना। एग्जाम देने जब बच्चा जाए तो बच्चे को प्यार से भेजो, बच्चे को गले लगाकर भेजो, उस दिन बच्चे को इंस्ट्रक्शन मत दो कि ये करना, इसे करना, ठीक से ध्यान से पढ़ना, ये करना। बेचारा बच्चा पहले ही घबराया हुआ है, माता पिता की 25 फायरिंग मिल गई, एग्जाम हॉल में गया, डर रहा है, एक क्वेश्चन गलत लिखा। अब सोचता है घर नहीं जाता, रेलवे स्टेशन चले जाऊं। और हम सभी को मालूम है रेलवे स्टेशन पे क्या करता है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेल्फ, ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स क्रिएट मेजर डिप्रेशन। इसीलिए बच्चे को प्यार से भेजो, आई लव यू एज यू आर, आई लव यू एज यू आर, तू मेरा बच्चा है, मैं जो है मैं तेरे को प्यार करता हूं, करती हूं। क्वेश्चन पेपर से नहीं, मार्क्स से नहीं, स्टैंडर्ड से नहीं, ग्रेड से नहीं। नहीं तो हम बार्गेन करते हैं बच्चे से, तू ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, तू ये करेगा तो मैं ये लेके दूंगा, तो वो बच्चे में भी बड़े होकर बार्गेनिंग आ जाती है। तो कोई उससे काम कराने जाता है, वो नहीं करता, नहीं करना, अच्छा ये ले लो, हाँ कर दूंगा, क्योंकि वो बार्गेनिंग बचपन से ही चली गई। तो वो हम ना करें, दोनों का बैलेंस करें। अब हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स आता है, मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट। जब कभी भी कोई परिस्थिति आती है हमारे सामने, हम उससे लड़ते हैं या भाग जाते हैं, यही दो रिस्पॉन्स रहते हैं, लड़ो या भागो। पर आजकल तीसरा रिस्पॉन्स कॉमन होता जा रहा है, न व्यक्ति लड़ पा रहा है न भाग पा रहा है, क्योंकि भागने का रास्ता बंद है, केवल पंखा और रेलवे स्टेशन ही है भागने का रास्ता। तीसरा रिस्पॉन्स आता जा रहा है फ्राइट, डर, फियर। सबसे ज्यादा एनर्जी खींचता है डर वाले विचार, व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। फियर इज लाइक ए कैंसर, पूरा खत्म कर देते हैं। दो चीजें मैं हमेशा ये कहता हूं जो इंडियन व्यक्ति को खत्म कर देती है, गिल्ट ऑफ द पास्ट, फियर ऑफ द फ्यूचर, ये दो खत्म कर देते हैं। गिल्ट ऑफ द पास्ट यानी पुरानी हीनता वाली भावनाएं, आई एम नॉट गुड, मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड, जो पर्सनैलिटी में हम कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होती है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूं, आप ठीक हो। तो वो बच्चा हमेशा ऐसा इन्फिरिटी, किसी से मिलेगा नहीं, चैलेंज नहीं लेगा, क्योंकि उसको डरा दिया गया है बचपन से ही, तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, ये घुस गया तो वो व्यक्ति खत्म हो गया। और दूसरा भविष्य का डर, ये खत्म कर देता। इसलिए हम लोग प्रेजेंट में जीते ही नहीं है, वर्तमान में जीते ही नहीं है, पैसा बहुत है पर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मी को कैसा दिखाया, ऐसा, पैसा गिर रहा है, पैसा गिर रहा है, पर हम क्या करते हैं लक्ष्मी को, डिपॉजिट कर रहा हूं, डिपॉजिट। तो माइंड से बॉडी को क्या मैसेज जाता है, ये बहुत डिपॉजिट कर रहा है, तो माइंड बॉडी को कहता तू भी डिपॉजिट कर, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। इसलिए हार्ट डिजीज कॉमन है, ये मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि हम फ्यूचर की चिंता में वर्तमान को खत्म कर देते हैं। और फ्यूचर में भी जाके क्या होता है, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, उस पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पाते, अब पैसे का क्या करूं, अब मेजर टेंशन क्या हो जाता है, मनी क्या करूं मैं, मनी का यूज करो, जितना इसको फ्लो करने दोगे उतना वो बढ़ेगा, डर नहीं होगा। इसीलिए फ्यूचर, पास्ट, वर्तमान, इसीलिए कहा पास्ट इज ए कैंसल चेक, फ्यूचर इज ए प्रोमिसरी नोट, प्रेजेंट इज ए कैश। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए कैश। तो अब डर को कैसे खत्म करें, फियर का अर्थ क्या हुआ, एफ ई ए आर। अब आप इसका मीनिंग देखेंगे, फियर का अर्थ क्या है, फॉल्टी परसेप्शन अपियरिंग रियल, यानी जो घटनाएं अभी हुई नहीं है, मैं उसको रियल बनाकर अंदर रख रहा हूं, हुई नहीं है, उसको पहले से ही सोच रहा हूं। एक व्यक्ति और एक मिनिस्टर जा रहे थे, रियल एग्जांपल बताता हूं। मिनिस्टर और वो व्यक्ति उसके साथ जा रहा है, एक गांव में जा रहे थे तो एक बड़ा पेड़ ट्री गिरा उस व्यक्ति के ऊपर, सिर के ऊपर। तो थोड़ा वो कॉन्शियस उसको नहीं रहा, फिर ठीक रहा, उसको डॉक्टर के पास मिनिस्टर ले गया। डॉक्टर ने सब स्कैनिंग किया, बोला नॉर्मल है, 4 घंटे रेस्ट दे देते हैं, बाकी इसको आप ले जाइए। पर वो व्यक्ति क्या सोचने लगा, मेरे ऊपर तो इतना बड़ा पेड़ गिरा, मैं तो कुछ हो गया, मैं तो बचूंगा नहीं। उसने अपने सब फैमिली मेंबर्स को बुला लिया कि मैं बचने वाला नहीं। डॉक्टर और मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तेरे को सब कॉन्शियसनेस है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं बचूंगा नहीं। अल्टीमेटली डॉक्टर और मिनिस्टर कंसल्ट करते हैं, फिर सोचते हैं 12 घंटे के बाद, और डॉक्टर उसके पास आता है, उसको कहता है मेरे पास अभी अभी अमेरिका से इंजेक्शन आया है, ये इंजेक्शन आपको लगा दिया तो ठीक हो जाओगे। पर बहुत पैसे का है, बहुत एक्सपेंसिव है। मिनिस्टर कहता है लगा दो, पैसा मैं दूंगा। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो गया। वो इंजेक्शन कुछ दवाई नहीं थी, बी कॉम्प्लेक्स था। दिस इज माइंड ओवर बॉडी। बीमारी का पहला कारण, बहुत गहराई से जाएं, पहला कारण ये होता है वो व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में पकड़ रहा है, उसने कुछ पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है कोई भी चीज, चाहे बच्चे की चिंता या कुछ चिंता या कुछ पकड़ा हुआ, छोड़ नहीं रहा है। वहां से बीमारी चालू हो जाती है। हमने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ देखा, हार्ट वाले प्रोजेक्ट में हस्बैंड वाइफ को बुलाया जाता है, उनसे पहला क्वेश्चन ये हम करते हैं कि ये बीमारी होने के पहले तुमको क्या हुआ, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और जो वो कारण बताता है वहां से बीमारी पता लग जाती है। एक लेडी को हार्ट डिजीज थी, वकील थी, एडवोकेट, हस्बैंड भी एडवोकेट। जब लेडी से पूछा इस बीमारी के पहले तो बिल्कुल दोनों बाहर से नॉर्मल, दोनों बहुत अच्छा कोर्ट में बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, पर जब उसकी वाइफ से पूछा क्या कारण क्या हुआ, उसने कहा आज शादी के 25 साल हो गए, इन्होंने मुझे कभी कोई अच्छा शब्द नहीं बोला। कोर्ट में तो खूब बोल लेते हैं, घर में नहीं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एट होम। अगर घर में दोनों पति पत्नी का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो बीमारी आएगी आएगी। नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बता नहीं सकता, उसकी वाइफ या हस्बैंड टाइट है, बॉस टाइट है, तो उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? वहां नहीं बोल सकता, यहां नहीं बोल सकता, घर में भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अंदर ही अंदर रख, और जैसे जैसे सप्रेस करेगा बीमारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझें और सुने। वही पति पत्नी अच्छे हैं जो एक दूसरे की सुनते हैं। इसलिए जब कभी भी आप अपने लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का लो, पहले से चेक कर लो, ये सुनेगी कि नहीं, ये सुनेगा कि नहीं। एक स्टडी में देखा जो लोग कुत्ते लेकर रोज घूमते हैं, कुत्ते को घुमाते हैं, उनमें बीमारी कम पाई गई। क्यों कम पाई गई? वो कुत्तों को रोज घुमाते हैं और अपना टेंशन कुत्ते को बता देते हैं। आज घर में ये झगड़ा हुआ, बॉस ने ये कहा, कुत्ता सुनता जाता है। कुत्ता क्या करता है? हाँ हाँ, कोई तो सुन रहा है। आदमी को बोलो तो काटता है, कुत्ते को बोलो तो सुनता है। इसलिए किसी को सुनाओ। मेडिटेशन भी क्या है? मेडिटेशन भी क्या है? अपनी बात उस परमात्मा को सुनाना। अभी तक भक्ति में हम क्या करते थे? बोलते जाते थे। भगवान बेचारा वेट करता रहता था, ये चुप हो तो मैं बोलूं, अब मेडिटेशन में क्या करना है, बोलो, फिर चुप हो जाओ, फिर वो बोलेगा, वो आपको डायरेक्शन देगा, वो आपके साथ है। सबसे बड़ी चीज है उस परमात्मा को आप अपने साथ पार्टनर बना लो, डर डर निकल जाएगा, जो फियर है डर है वो निकल जाएगा। डर को निकालने का तरीका एक ये है कि जिस चीज से डर लगता है वो चीज धीरे धीरे करो और कराओ। बच्चे को पानी से डर लगता है, धीरे धीरे बच्चे को पानी में हर दिन धीरे धीरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, एक दिन उसका डर खत्म हो जाएगा। जो चीज से डर है वो करो, अंधेरे से डर लगता है उसको ले जाओ, टॉर्च लाइट नहीं दे दो उसको, अंधेरे में ही ले जाओ, इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। दूसरा, जब डर लगे सांस छोड़ो, कोई आदमी आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, पति गुस्सा कर रहा है, बॉस गुस्सा कर रहा है, पत्नी गुस्सा कर रही है, तो क्या करो, आप खड़े रहो, बोलो मैं आता हूं वापस, साइड में चले जाओ, सांस को छोड़ो, फिर आ जाओ, फिर खड़े हो जाओ। तीन चार बार वो गुस्सा करेगा या करेगी, फिर चुप हो जाएंगे। लोग गुस्सा क्यों करते हैं, लोग गुस्सा क्यों करते हैं, क्योंकि वो खुद भी उनको अपने आप से अच्छा नहीं लगता। एक गुस्सा तो इसलिए करते हैं लोग, दूसरे को सुखी देखना अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ये हो गया है, चार तरह के दुखी हैं। एक खुद के दुख से दुखी, दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरा दूसरों के सुखों से दुखी, चौथा बिना कारण दुखी। तो वो ये चाहता है कि मैं दुखी हूं, मैं ऑफिस में आया और देख रहा हूं सब लोग खुश हैं, मेरे को सिर दर्द हो रहा है और सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक एक के पास जाके बोलूंगा मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। धीरे धीरे सबको सिर दर्द हो गया, मैं अब ठीक हो गया। तो तीन चार बार करता है फिर चुप हो जाएगा। चौथा तरीका दुख को दूर कर, डर को कम करने का, भगवान हमारा साथी है, वो गीत बजा देना, भगवान हमारा साथी है। अब आप क्या करना, चौथा डर को दूर करने का, जब कभी भी डर लगे परमात्मा को अपने साथ ले जाओ। परमात्मा हमारे ऊपर है, नीचे है, सामने है, पीछे है, साथ में है। ऊपर वो हमारे को ब्लेसिंग दे रहा है, नीचे हमारी फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है, आगे मुझे गाइड कर रहा है, पीछे मेरे को प्रोटेक्शन दे रहा है, साथ में दोस्त के रूप में चल रहा है। तो जब कभी भी डर लगे उसको साथ में लेकर फील करो, चलो नहीं, फील करो कि वो मेरे साथ है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। हर जगह उसका प्रेजेंस फील करेंगे तो हमारे अंदर जो डर है वो कम होता है। अभी हम डर को कम करेंगे, पहले सांस को छोड़ें, अब राइट हैंड लीजिए और लेफ्ट के ऊपर रख दीजिए। राइट हैंड मेरा परमात्मा है, लेफ्ट में हूं। अब उसको फील करना कि भगवान मेरे साथ चल रहा है।
Ah.
वेरी गुड, ब्यूटीफुल। जब कभी भी डर लगे उसको अपना साथी बनाना। अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं, समय कम है अपने पास। अब ये लास्ट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट। हर एक के अंदर दो फाइलें रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मेरे अंदर नेगेटिव फाइल नहीं है। हर एक के अंदर रहती है, बचपन से जो हमारे माता पिता मिले, दोस्त मिले, टीचर्स मिले, इन्वायरमेंट मिला, इसके अनुसार प्लस माइनस दोनों फाइलें रहती हैं। ये फाइलें कब खुल जाती है? जब कभी भी हम उससे रिलेटेड कोई घटना देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, तो हमारी वो फाइल खुल जाएगी। समझो बचपन से मैं फूल से, जब छोटा था तो फूलों से खेल रहा हूं, गुलाब के फूलों से, और माता ने आकर डांट दिया और मेरे आंखों में से आंसू आ गए। अगर ये मैंने सीरियसली उसके मेरे अंदर चला गया तो बड़े होने तक जब कभी गुलाब के फूल को देखूंगा आंखों में से आंसू नेचुरल आ जाएंगे। ये फाइलें कोई गीत, कोई म्यूजिक या कोई सीन देखकर खुल जाती है। अब हमें क्या करना है? पहली स्टेप, ज्यादा समय होता तो मैं आपको करवाता, लिखवाता। पहली स्टेप ये है, आप आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर कौन सी नेगेटिव प्रॉब्लम है जो मुझे बार बार तंग कर रहा है, घर में, ऑफिस में या सोशल रिलेशन। आइडेंटिफाई वन नेगेटिव प्रॉब्लम विच इज ड्रेनिंग माय एनर्जी, जो मेरी शक्ति को ले रहा है, उसको लिख दीजिए। मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप, जो मेरे अंदर नेगेटिव प्रॉब्लम है, मैंने अपनी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद बैठ गया, एक अच्छा गीत सुना जो बचपन से अच्छा लगता है, और फिर अल्फा लेवल पे जाके उस नेगेटिव प्रॉब्लम को या तो कैप्सूल फॉर्म में या कैसेट फॉर्म में या कागज के ऊपर मैंने लिख दिया कि ये मेरा नेगेटिव प्रॉब्लम है। मैंने कैसेट में डाल दिया, मैंने कैप्सूल में डाल दिया या मैंने कागज पर लिख दिया। फिजिकली भी हमें करना पड़ता है। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में मैं उस नेगेटिव प्रॉब्लम को कैप्सूल के फॉर्म में या कैसेट के फॉर्म में बाहर निकाल दूंगा, या कागज है तो उसको जला दूंगा। मैंने अपना नेगेटिव प्रॉब्लम जला दिया। चौथा स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, कि मैं अपने अंदर नया प्रोग्राम डालूं जो मुझे अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को जो अच्छा लगता है उसका प्रोग्राम बना है। ज्यादातर हम जो भी लाइफ में करते हैं वो आत्मा के सात गुणों में से एक गुण के लिए करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना सुबह के लेसन में या कल के लेसन में, आत्मा के कितने गुण होते हैं? सात। जो भी हम जिंदगी में करते हैं वो सात गुणों में से एक गुण के लिए करते हैं। जैसे मैं घड़ी, आपने घड़ी क्यों पहनी? घड़ी क्यों पहनी? टाइम देखने। टाइम क्यों देखना चाहते? और आगे बढ़िए। ये शर्ट क्यों पहनी? अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली हम कहां जाते हैं? वो सात गुणों में से एक गुण की तरफ जाते हैं। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है बार बार? मेरे में प्यार या शांति की कमी है। तो जो ऑपोजिट कैरेक्टर मेरे में कम है उसको भरिए। हम कोई भी नेगेटिविटी को दबा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, पर हम उसमें नया प्रोग्राम डालें। अगर मैं कहूं अभी गुस्सा नहीं करना एक सेकंड के लिए, या एक सेकंड के लिए काले मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो क्या आएगा? बार बार बंदर आएगा। तो दबा नहीं सकते, उसकी जगह हमें क्या करना है? कुछ नया ऐड करना है। जितना हम हर रोज अच्छा प्रोग्राम इसमें डालते जाएंगे, तो हमारा पुराना प्रोग्राम काम करना कम हो जाएगा। जैसे मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, मुझे डर बहुत लगता है, तो मैं कौन सा संकल्प लूंगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसको दिन में 4 बार रिपीट करूंगा, मुंह से भी मेंटली भी लिख के रख दूंगा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर आया 3 घंटे बाद, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 21 दिन तक, 1 महीने तक, 6 हफ्ते तक चलने दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये प्रोग्राम अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जो मेरा कमजोर विचार था, डर वाला, वो उठेगा, पर अब क्या करेगा? ये मास्टर सर्वशक्तिवान वाला प्रोग्राम उसको मार देगा। जो पांडव कौरव की लड़ाई बता के खत्म करता हूं, और सिंपल करके, कैसे लड़ाई होती थी पांडव कौरव की? तीर निकालता था, तीर यहां रखता था और छोड़ता था, दूसरा भी तीर यहां से निकालता था, यहां रखता था, छोड़ता था। तीर में शक्ति नहीं थी, यहां जो शक्ति भरते थे उसमें शक्ति थी। दोनों तीर आके मिलते थे, जो पावरफुल था वो चला जाता था। इसी तरीके से हम सभी के अंदर, आत्माओं के अंदर, वो पॉजिटिव शक्ति है, पर हम उसका यूज करना भूल गए हैं और धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं। रोज अपने उन पावर्स को एक्टिवेट करेंगे तो हम सभी भी हनुमान जैसे हो सकते हैं। हनुमान कोई बड़ा नहीं, हनुमान छोटा भी हो जाता है, हनुमान बड़ा हो जाता है। इसका अर्थ है, माइंड से मैं छोटा हो सकता हूं, बड़ा हो सकता हूं। केवल इस शक्ति को जागृत करने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, आप अपनी साइलेंस की स्टेज पर स्टेज हो जाओ। दूसरा, मास्टर बनकर इस शक्ति को ऑर्डर करो। जो शक्ति चाहिए आप उसको ऑर्डर करो। 2 शब्द आपको देता हूं, स्टॉक एंड स्टॉप। स्टॉक, स्टॉप। जितना मेरा स्टॉक अच्छा होगा थॉट्स का, उतना मेरा स्टॉपिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। स्टॉक नहीं होगा तो स्टॉप नहीं होगा। तो रोज दिन में 3 बार स्टॉक को एक्टिवेट करना। लास्ट में गॉड्स रिस्पॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, वो देख के खत्म करता हूं। जोक के रूप में आपको देता हूं, जिससे आप हंसें। लाफ्टर इज ए एंटीडोट ऑफ स्ट्रेस। जितना हंसेंगे अंदर के खून में एंडोर्फिन्स अच्छे बनेंगे। कभी भी जिंदगी में सीरियस नहीं बनना। कोई भी चीज सीरियस नहीं है, हम उसको सीरियस बना देते हैं। नथिंग इज सीरियस, नथिंग इज प्लस और माइनस, ऑल एक्सटर्नल इवेंट्स आर न्यूट्रल। हम उसको सीरियस कर देते हैं। मैच, क्रिकेट मैच देख रहे हो, अगर मैच के बाद हार्ट अटैक हो गया तो किसकी गलती? मैच की गलती कि मेरी गलती? तो मैंने उसको सीरियस किया। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पांव रख दिया। रावण के महारथियों ने उसके पांव को हिलाने की कोशिश की, पांव हिला नहीं। वापस अंगद गया अपने दोस्तों के पास। उसके दोस्तों ने कहा, अरे अंगद, बड़ा टेंशन हो गया था, तूने जब पांव रख दिया था तो हमारी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी। अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता मां को तो हमने खो दिया था। अंगद ने कहा, देखो, मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी, मेरी थोड़ी थी। तो इसी तरीके से जब कभी भी प्रॉब्लम आए, टेंशन आए, उसको दे दो। लास्ट वर्ड गॉड का, जी बता दिया, ओ बता दिया, डी। डी का अर्थ क्या है? रात को डी करो, डिस्ट्रॉय एंड डिलीट। हर दिन रात को सोने के पहले जो चीजें मेरे काम की नहीं उसको क्या करो? डिस्ट्रॉय, जाने दो, रिलीज, लेट गो, लेट गो, लेट गो। अभी आप भी करिए, लेट गो। रोज रात को अपनी चिंता किसको दे देना है? उसको देना है। वो टेंशन में आए, हम क्यों टेंशन में आए? हम टेंशन में आते हैं तो वो रिलैक्स करता हैगा। उसको रोज अपना काम दे दें। अब एक मिनट में एक गीत बजेगा, सब सौंप दो। अभी क्या करना? सब चीजें सौंप देना। फिर से दो बार ताली इधर, तीन बार। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, सब सौंप देना। वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खड़े हो जाएं, थोड़ा पांव को ढीला करें। हाँ, ढीला करें। नेक्स्ट लेक्चर के टाइम बन। अच्छा अच्छा, बैठ जाएं। हाँ, ढीला कर दिया, बैठें आराम से। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। बहन जी ने कहा 5 मिनट और हैं, कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। आप लोगों को गाना गाना आता है? एक अच्छा गाना प्ले करेंगे, आपको भी गाना है। एक तो हंसना रोज है, एक एक गुना खाना, 2 गुना पानी, 3 गुना एक्सरसाइज, 4 गुना हंसना, 5 गुना काम करना और 6 गुना प्रभु को याद करना। तो हंसना बहुत जरूरी है। दूसरा, गीत गाना जरूरी है। सबके सामने नहीं गा सकते, सबके सामने हंस नहीं सकते, तो बाथरूम में जाके हंसे, वहां गाना गाए। नहीं तो लाफिंग क्लब में जाके पैसा देना पड़ता है, हंसते हैं वापस सीरियस हो जाते हैं, वो नहीं करना है। जब मौका मिले खुद पे हंसना है, दूसरों पे नहीं हंसना है, खुद पे हंसना। थायराइड, इनका क्वेश्चन है कि लेडीज में थायराइड प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होता है। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स रहते ही हैं, दूसरा क्या देखा गया, जो चक्र का मैं पिक्चर नहीं दिखाया, उस चक्र फिलोसॉफी के अनुसार जो ये चक्र है थायराइड वाला, ये डिनोट करता है कम्युनिकेशन को। यहां हमारा वोकल कॉर्ड है जिससे हम बोलते हैं। अगर किसी लेडी को, जनरली ये देखा जाता है, हाउसवाइफ को हस्बैंड चला जाता है, बच्चे सेटल्ड हो गए, अब वो लेडी क्या है, घर में अकेली है, और उसका हस्बैंड का नेचर ऐसा नहीं है कि घर आकर उससे कम्युनिकेट करता है, उसका हस्बैंड भी नॉन एक्सप्रेसिव है, तो क्या होगा, वो लेडी की हालत अंदर ही अंदर वो रखेगी, एक्सप्रेशन नहीं कर पा रही है। इसलिए उसका सॉल्यूशन क्या है, थायराइड को ठीक करना है। दवाई तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगी। बाहर ग्राउंड में निकलकर आकाश को देखे और आकाश को देखकर बोले, बोले या भगवान को बोले। ये चक्र ब्लू कलर मांगता है, एक्सप्रेशन। और जो खाने में, जिनमें ये ब्लू कलर होता है वो खाए, सोयाबीन है, कुछ पत्ता गोभी है उनमें भी आयोडीन रहता है, वो भी खाए और आकाश को देखे रोज। जब हम आकाश को देखते हैं तो हमारा माइंड बेहद में चला जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, और किसी न किसी से बात करें। और आजकल मोबाइल बहुत अच्छे हो गए हैं, मोबाइल है तो हस्बैंड का काम है पत्नी को दो दो घंटे में फोन करें और कम से कम ये तो पूछ ले कैसे हो। एक शब्द भी आप बोल देते हो उससे भी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जितने भी स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रखते जाते हैं। एक स्टडी में देखा जिनकी पत्नियां अपने पति को घर के बाहर छोड़ने आती है और कुछ अच्छे शब्द बोलती है, उनके पतियों में हार्ट डिजीज और एक्सीडेंट कम पाए गए। अब होता क्या है, 3 साल 4 साल की शादी में पत्नी तो बाहर तक आती है, 4 साल के बाद छोड़ देती है, वही चल रहा है। फिर क्या होता, पति आगे भाग रहा है पत्नी पीछे, या पत्नी आगे पति पीछे। हमेशा दोनों साथ में चलो, बाद में भी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए जो पत्नियां घर में रहती है उनके पतियों को जरूर घर जाकर बात करना चाहिए। अगर दोनों वर्किंग है तो हेड टेल कर लें। घर आने के बाद हेड टेल से पहले पति बोले पत्नी सुने, फिर पत्नी बोले पति सुने। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और मेडिटेशन भी क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है कि हम अपनी फीलिंग्स को बाहर कहां तक लेके आ जाते हैं। अगर हम सिंसियरली प्रे करते हैं, अच्छी तरह प्रे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है, उससे भी काफी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर हम अपने प्रेयर में फेथ रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, तो उससे भी बीमारियां ठीक होती। 20-30% ही मेडिसिन काम करती है, कोई भी मेडिसिन 30% ही काम करती है, मैक्सिमम 40% काम करती है, 60% डॉक्टर और पेशेंट का बिलीफ सिस्टम काम करता है। इसलिए आप देखो आउटडोर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा मरीज कौन से होते हैं, आउटडोर की प्रैक्टिस में, या तो सीनियर पीपल, 60 साल के ऊपर रिटायर्ड पीपल, या लेडीज। क्यों? कम्युनिकेशन, कोई तो मेरी सुने। तो ये लिसनिंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी मैनेजमेंट में। इसको आप करो तो वो ठीक होगा। तो ये नॉन एक्सप्रेशन के कारण थायराइड का प्रॉब्लम आता है। रियली टेक अवर एग्जाम टू मेक, ये क्या पूछा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्या था ये, डू ही रियली टेक्स अवर एग्जाम टू मेक अस माया जीत। अच्छा हाँ, भगवान, भगवान इसलिए हम सबकी परीक्षा लेता है हमें मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। अगर मैं आपको कहूं ये लाइफ कैसी है, जिंदगी, हम सब नोन से अननोन में जाते हैं, हर सेकंड क्या होगा पता नहीं। अगर भगवान हमें पहले से ही बता दे, पैदा होने से पहले ही, पैदा होने पे बता दे तेरी शादी ये होगी, ये काम मिलेगा, ये बच्चे होंगे, ये लड़ाई होगी, तो टेंशन ज्यादा होता। इसलिए ये ड्रामा कैसा बनाया भगवान ने, अननोन, क्या होगा, एक्साइटिंग, थ्रिल। इसलिए कुछ प्रॉब्लम आना जिंदगी की निशानी है। प्रॉब्लम नहीं आए तो इसका मतलब है कि मैं खत्म हो गया। प्रॉब्लम आए उस दिन तो खुश होना चाहिए, आहा आज मैच है, आज मजा आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जीतेंगे तो ताकत आएगी। प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा प्रॉब्लम भेजता रहता बीच बीच में, जिससे कि हमारा माइंड अच्छी तरह काम करे। ऑस्टियोपोरोसिस, महिलाओं में ज्यादातर ये प्रॉब्लम मीनोपॉज के बाद कॉमन रहता है। हड्डियों में सॉफ्टनेस आने लगती है, जिससे कभी कभी कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन, कभी कभी हार्मोन का प्रॉब्लम आने के कारण ये बोनी प्रॉब्लम आते हैं। दवाई तो लेना ही है, कैल्शियम सप्लीमेंट तो लेना ही है, कईयों में हार्मोन सप्लीमेंट भी देना पड़ता है, पर सबसे अच्छा अपने अंदर वॉक भी करें, सूरज सन बाथ 15 मिनट्स रोज एक्सरसाइज करें, अपने रिलैक्सेशन करें, जॉइंट्स को स्ट्रेच करें, जो शुरू से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, और जरूर है कि 15 मिनट सन बाथ लें, हल्की धूप में पैदल करें। खाने में कैल्शियम सप्लीमेंट वाले खाने, वो फूड्स ज्यादा लें। मेन चीजें इसमें अपने में शक्ति भरें, हड्डियों में उस डिटेल में नहीं गया, एक एक ऑर्गन को एक एक कैरेक्टर चाहिए, तो हड्डियों को चाहिए शक्ति। जनरली लेडीज क्या सोचती हैं, मेरे में शक्ति नहीं, मेरे पति ही सब करेगा, तो वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। आज के समय में अपने में शक्ति भरें, इसलिए मैं बार बार ये वाला स्लोगन दे रहा था, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। वो बोन में जाने दें, जॉइंट्स में जाने दें, उसको फील करें कि मेरे जॉइंट्स में जा रहा है पावर, और वॉक जरूर करें।
ओम शांति जी। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, क्यों, पहली बार माइक पकड़ा है। तो जब हम संता क्रूज से यहाँ आ रहे थे आबू, तो कुछ मेरे मन में चिंताएं थी, और हमारे साथी जो संता क्रूज सेंटर से जुड़े हुए हैं, तब कुछ घर के माहौल, कुछ चिंताएं भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जीवन में मुसीबत जितनी आती है उनका सामना करना चाहिए, और मुसीबतों में जो सीखने मिलता है ना, इसी विद्यालय कहा नहीं है। तो हम ट्रेन में आ रहे हैं, हमारे भाई साहब वहां बैठे हैं, तो मैंने अपने आप को बचपन में ले गया, और कुछ स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो सामने गाय के बछड़े थे, गाय थे, तो मैंने अपने आप को मैं गाय के बछड़े की तरह महसूस करने लगा, तो गाय के बछड़े के सामने मैंने आवाज की, ट्रेन खड़ी हुई थी, गाय बच्चे हुआ, तो मैंने इस तरह आवाज की उनके सामने, तो वो गाय का बछड़ा कान ऊपर करने लगा, तो भाई साहब सब हंसने लगे। फिर मैंने आवाज निकाली, क्यों कि ये छोटे बच्चे भी होते हैं ना, अपने माँ को बुलाते हैं, माँ को पुकारते हैं, शायद माताएं समझती हैं कि बच्चे का प्यार क्या होता है। उसके आगे कुछ गए तो मुर्गे के बच्चे थे, और मुर्गी भी थी, तो मैंने फिर आवाज निकाली इस तरह, कि जीवन में जो हमें तक मिली है मनुष्य अवतार की, ईश्वर को पाना है, तो भाई साहब सब ताली बजाने लगे, अरे अंकल जी आप तो बच्चे हो गए। फिर मैंने आवाज निकाली, तो उसके सामने एक छोटी सी मुर्गी थी, वो पैर ऐसा करके बोलती है, का, 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 का। फिर मुर्गा बोलने लगा, तो कभी कभी जीवन में खुशियां ले आते हैं ना, कितना भी दर्द हो चिंता हो दूर हो जाता है। और फिर जैसे हम जॉक्स बोलने लगे, भाई साहब बैठे हैं उन्होंने सुना, तो बॉम्बे से आते हुए अब तक पता नहीं चला कैसे वक्त चला गया। अगर जीवन में खुशियां हो और मुश्किल काम जो आता है उसको हंसके भूल जाइए और जीवन में खुशियां ले आइए, तो ऐसा सुनहरा वक्त हमें, बचपना सुनहरा जैसे होते ना, सुनहरी जिंदगी होती है, तो ये बुढ़ापा भी सुनहरी जिंदगी की तरह बदल जाता। फिर भी देखो कभी माइक नहीं पकड़ा, मेरे हाथ हिल रहे, देखो डॉक्टर साहब तो शायद जानते ही हो गए। तो एक वक्त जो नए इंसान थे उनको कुछ भाषण करना था, उनको बोलना था महात्मा गांधी जी हमारे देश के महान व्यक्ति थे, मगर उनको माइक में कुछ बात करने की आदत नहीं थी, तो बोलने लगा हमारे महात्मा तात्मा गांधी जी। क्यों, जब अपने पे भरोसा नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है, तो कहा है करत करत अभ्यास जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सील पर होत निशान। अगर हम मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर के तरफ हम ध्यान लगाएंगे, तो जरूर हम पहुंच सकते। क्यों, एक रस्सी होती है सूत की, वो भी एक पत्थर पर निशान बन जाती है, निशान बना देती है। अगर हम सब अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जरूर हम ईश्वर को पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, हमारी तो बात सुनिए आपने, शुक्रिया।
आपके रिलेटेड क्वेश्चन था कि जीवन में फन क्यों जरूरी है, तो फन इसीलिए जरूरी है कि हम हल्के हो जाते हैं लाइफ में, दुख सुख खुशी ये सब दो जीवन के जो दो पहलू हैं, इसीलिए फन भी जरूरी है। हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा क्यों आते हैं, जैसे एक तो मेल्स का जो नेचर है, टाइप ए पर्सनालिटी रहती, कार्य करता है उसको हमेशा वर्क घर के प्रेशर्स रहते हैं। दूसरा जेनेटिक मेकअप भी होता है, जो हार्मोन्स फीमेल में होता है वो मेल में उसकी कम मात्रा रहती है, जो वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज को 50 साल तक लेडीज में, वो मेल में नहीं रहता है। तीसरा हमारा बायोकेमिकल्स जो रहते हैं वो मेल में ज्यादा रहते हैं, और उसके कारण ही ये आजकल एक एक्स सिंड्रोम कहा गया है, वजन ज्यादा, इंसुलिन का काम रेजिस्टेंस हो जाना और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के कारण ये बीमारी मेल्स में ज्यादा होती है। अभी लास्ट एक गीत आप सबको खड़े होकर गाना है, पंछी बनो उड़ के फिरो, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप उड़ना भी, उड़ना ऊपर नहीं नीचे ही मेंटली उड़ना। हाँ फिर से चालू हो जाए दो बार इधर, बजाते जाओ बजाते। पंछी बनो उड़ के फिरो, जिसको गाना आता गा।
गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में,
अब एक्सरसाइज भी करते जा, दोनों पाँव को ऊपर रख। अब आपको एक एक्सरसाइज का रूल बता देते हैं, जो भी मसल्स को करना है उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलैक्स करें, जैसे ये दोनों है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो भी मसल है दोनों लेवल पे करें। नी को भी हमेशा जब दिन में टाइम मिले थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करें, हमेशा बैठे नहीं रहे, बैठने से ही मसल्स स्टिफ होते हैं और उससे ही स्पॉन्डोलाइटिस बैक पेन नी रिप्लेसमेंट के प्रॉब्लम आते हैं। जहां कहीं मौका मिले करो, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बीच में है, कहीं भी करें, आप 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।